जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी। स्लो, धीरे धीरे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, गोपी जन वल्लभ, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तेरावन चारि, यमुना तेरा यमुना तेरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरावनचारि, यमुना तेरावनचारि, माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चारे यमुना तेरा वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, loudly. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol.
Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivrajakacharya. Astotra Shatashri Srimad is Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada ki, Sri Radha Govinda Dev ki, Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki, Sri Sri Panch Tattva ki, Samaved Gaura Bhakta Vrinda ki, Granthara Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottama. Devim Sarasvatim Vyasa, Tato Jayamudiraye, Nasta Prayeshu Abhadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Ruttama Shloke, Bhaktir Bhavati Naistiki, Grantra Srimad Bhagavatam. Skanda 2, Adhyay 7, Shlok Sankhya 33. Kridan Vane Nishinisha Kararashmi Gauryam.
Kridan Vane Nishinisha Kararashmi Gauryam.
Rason Mukha Kalapadaya Tamurchitena. Uddipita smara rujam vraja brudvadhunam. Artur harishati shiro dhanadanu gasha. Kridan vane nishinisha kararashmi gauryam. Rason mukha kalapadaya tamurchitena. Uddi pita smara rujam vraja brudvadhunam. हर्तुर हरे शति शिरो धनदानुगस्सा क्रीडन वने निशि निशा कर रश्मि गौर्या रासोन्मुखा कलपदायत मूर्छितेना उद्दीपिता स्मर रुजाम रजभ्रद्वधूना हर्तुम हरे शति शिरो धनदानुगस्स क्रीडन वने निशि निशा कर रश्मि गौर्या वृंदावन के जंगल में निशी रात्रि में निशाकरा चंद्रमा रश्मि गौरिया श्वेत चांदनी का रास उन्मुखा रास करने के लिए इच्छुक कलपदायता मधुर गीतों मूर्छितेना तथा मूर्छना समेत उद्दीपिता जागृत स्मर रुजाम कामेच्छा व्रजभृत व्रजवासी वधूना पत्नियों का हर्तु हरण करने वाले का हरिष्यति काट लेंगे शिरः सिर धनदनुगस्सा कुबेर के अनुचर का अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा काम उत्पन्न करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर दड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य, यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन हैं। वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात है और ब्रह्मा जी उनमें से एक हैं। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड का वध निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी, न कि उसके साथ साथ। पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड के वध का भी यह वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होनी है। भगवान ने शंखचूड का वध होरिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक ये उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात हैं। भगवान की होरिका लीला से एक दिन पूर्व ये उत्सव शंखचूड का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्यतः भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा काम उत्पन्न करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर दड़ से अलग कर दिया। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो दूसरा स्कंद है, जिसमें शुकदेव गोस्वामी के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं, तो तीन प्रकार के संवाद एक ही साथ घटित हो रहे हैं। शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवत तत्व और भगवत कार्यकलापों को जानने की अपनी जो प्रबल आकांक्षा है, इच्छा है, उसको प्रकट कर रहे हैं। और उसी संवाद में सुत गोस्वामी, जो मूल संवाद है श्रीमद् भागवतम का शुकदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में, उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं और उसके अंदर एक संवाद है। तो भागवतम देखा जाए तो पूरा अलग अलग प्रकारों के संवादों से भरा हुआ है, अलग अलग भक्तों के आपस में जो प्रश्न और उत्तर हैं। तो कोई भी भक्त किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो वो क्या कर रहा है, पहले जो महाजनों ने जिस प्रकार से वर्णित किया है उसको प्रकट कर रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित इस ब्रह्मांड के बाकी सब चीजों के बारे में जानना चाह रहे थे, तो उसी को बताते हुए है जो शुकदेव गोस्वामी हैं, पांचवें अध्याय के शुरुआत में शायद दूसरे अध्याय में ही नारद और ब्रह्मा का संवाद वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ये हम सबके लिए बहुत ही मूल्यवान निधि है, बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवतम के आखिरी में 12वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हुए कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, कि सारे वेद और उपनिषदों का ये जो सार श्रीमद् भागवतम है, तद रसामृत तृप्तश्च नान्यत्र शद रति क्वचित। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के रस सागर में अपने आप को डुबाता है तो उस व्यक्ति की रति आकर्षण बाकी और जो भौतिक रस है उसको चखने में नहीं होगी। वास्तव में देखा जाए कृष्ण लीला तो ये रस का भंडार है, सारे रसों के आगार है। कृष्ण को रसराज कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे कृष्ण कि ये जो रसमय लीलाओं का वर्णन ये ब्रह्मा के मुख से नारद सुन रहे हैं इन श्लोकों में। तो यहाँ कृष्ण के दिव्य जो वृंदावन की लीलाएं हैं जो बहुत अधिक रहस्यमयी है, निगूढ़ है और भौतिक बुद्धि से परे है, इसलिए आचार्यगण उसको अचिंत्य कहते हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत ही अधिक कठिन है। तो लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति राइट सोर्स से श्रीमद् भागवतम के इन भगवत कार्यकलापों को समझता है, उसमें अपना मन और हृदय को डुबाता है, तो वो व्यक्ति का रति या आकर्षण भौतिक विषयों के लिए या भौतिक रसों के लिए आकृष्ट नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम के गुणों को सुनना भी एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम किसी के गुणों को सुनते हैं तो फिर हम इंस्पायर हो जाते हैं उस व्यक्ति की या उस ऑब्जेक्ट की सेवा करने के लिए। तो उसी प्रकार से नियमित रूप से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के ग्लोरी, श्रीमद् भागवतम के महत्व को भी हमें थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। जब भागवतम का आप गुणगान करते हो तो श्रीमद् भागवतम आपको वो एम्पावर्ड करता है ताकि आप श्रीमद् भागवतम को क्या कर सकते हो, वर्णित कर सकते हो। और ऐसे वर्णन के द्वारा निश्चित रूप से जो वक्ता है और जो श्रोता है उन दोनों का शुद्धिकरण होता है बहुत ही तीव्र गति से। इसलिए आखिरी में शुकदेव गोस्वामी ने कहा, निम्न गानाम यथा गंगाम देवानाम अच्युतम यथा, जिस प्रकार से निम्न गा नीचे की ओर बहने वाली नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है और देवानाम जो देवगण है या भगवान है उनमें अच्युत कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ है, पुराणानाम इदम तथा, उसी प्रकार से जितने भी पुराण आदि हैं उनमें श्रीमद् भागवतम है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी और एक श्लोक को वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों के लिए कोई चीज प्रिय है तो वह श्रीमद् भागवतम है। वैष्णव श्रीमद् भागवतम का आलिंगन करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके लिए लाइफ जीवन और प्राण है। जो इस्कॉन के एक सन्यासी थे कृष्णदास स्वामी गुजरात से थे, तो उनको एक ब्रह्मचारी ने पूछा कि महाराज मैं बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा हूं, आजकल मेरे जीवन में बहुत विपदाएं आ रही है, बहुत भौतिक विचार आ रहे हैं, स्त्रियों के प्रति मेरा आकर्षण बहुत अधिक प्रगाढ़ हो गया है, मुझे लगता है कि अभी ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना बहुत कठिन है, तो प्लीज मुझे उपाय बताइए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा गेट मैरिड, शादी करो। अभी उन्होंने कहा मैं तो आपसे कुछ ये सही उत्तर चाह रहा हूं, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं आपके इस ना एक शब्द को, शादी करो या गेट मैरिड। उन्होंने कहा फिर से वही चीज दोहराई, क्या करो तुम, गेट मैरिड, शादी करो। तो वो जो भक्त था, वो जो शिष्य था, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया और उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज, अब मैं और कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ, मेरा आप मुझे और ठीक से बताइए। तो उन्होंने कहा शादी करो लेकिन किससे, श्रीमद् भागवतम से। तो अब आप क्या हो सकते हो, स्वाभाविक रूप से बच सकते हो भौतिक एंटेंगलमेंट से। इसलिए सनातन गोस्वामी का जो जीवन है वो श्रीमद् भागवतम के प्रति बहुत अधिक डेडिकेटेड है, समर्पित है। भक्ति रत्नाकर में सनातन गोस्वामी का वर्णन करते हुए नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्री सनातनेराति अद्भुत चरित श्रीमद भागवते जार अतिशय प्रेत। सनातन गोस्वामी का चरित्र इतना अतुलनीय है कि उनको बहुत अधिक प्रीति श्रीमद भागवतम के लिए है। प्रथम वयसे स्वप्ने एक विप्रवर श्रीमद भागवत देह आनंद अंतर। तो सनातन गोस्वामी जब अपना राजा नवाब हुसैन के वहां नौकरी में व्यस्त थे, लेकिन रोज विदाउट फेल अपने जो भाई हैं रूप गोस्वामी और कई सारे ब्राह्मणों के संग में श्रीमद भागवतम या आदि ग्रंथों को सुनते थे। तो सनातन गोस्वामी का ऐसा जो प्रेम था श्रीमद भागवतम के लिए, तो एक दिन जब वो सो रहे थे तो उसी समय स्वप्न में एक ब्राह्मण आया और उस समय उन्होंने क्या किया, स्वप्न में उस ब्राह्मण ने एक भागवतम की कॉपी उनको प्रदान की सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी सुबह उठे, जब उनका स्वप्न भंग हो गया, स्वप्न भंगे सनातन व्याकुल हैला प्राते से विप्र श्रीमद भागवत दिला। तो सुबह के समय जब उनका स्वप्न भंग हुआ और जब वो उठे और उठ के जब अपने दरवाजे के बाहर गए तो देखा वही ब्राह्मण जिसको उन्होंने स्वप्न में देखा था, वो ब्राह्मण वहां खड़ा है और उस ब्राह्मण के हाथ में क्या है, श्रीमद भागवतम का एक कॉपी है। पाइया श्री भागवत महाहर्ष चित्ते मग्न हैला प्रभु प्रेमामृत समुद्र ते। तो सनातन गोस्वामी को एक प्रकार से पहली बार श्रीमद भागवतम का कॉपी प्राप्त हुआ था। श्रीमद भागवतम को ग्रहण करने मात्र से उनके हृदय में बहुत अधिक आनंद की उन्होंने अनुभूति की और प्रेमामृत में वो मग्न हुए कि कब मैं श्रीमद भागवतम को सर्व करूंगा, कब भागवतम की सेवा करूंगा। श्रीमद भागवत अथ ऐछे आस्वादिला तहा श्री वैष्णव तोष नित्य प्रकाशिला। तो उन्होंने श्रीमद भागवतम का इतना अधिक आस्वादन किया कि नरहरि सरकार कहते हैं, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, आगे चलकर वैष्णव तोषणी नाम का जो कमेंट्री है श्रीमद भागवतम पर उन्होंने दिया है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी एक विशेष आचार्य है। वो भागवतम का गुणगान करते हुए एक श्लोक में कहते हैं, मद एक बंधु मद संगी मद गुरु मद महादना, कि हे भागवतम मैं आपको नमस्कार करता हूं कि तुम मेरे असली बंधु हो। मद एक बंधु मद संगी, आप मेरे बंधु हो, मैं आप मेरे असली संगी हो। मद गुरु, आप मेरे असली टीचर हो, असली गुरु हो। मद महाधन, और मेरा कोई धन है तो आपके अलावा मेरे पास सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। हे भागवतम आप मेरा धन हो। मद निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते, कि मेरा उद्धार करने वाले आप हो, मेरे उद्धारक हो, मेरे निस्तारक हो, और मेरा जो भाग्य है गुड फॉर्चून है वो आप श्रीमद भागवतम हो, और मुझे सर्वाधिक आनंद प्रदान करने के लिए कोई सक्षम है तो आपके अलावा इस जगत में कोई आनंद प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ये वर्णन करते हुए कहते हैं, असाधु साधुता देयान अति नीच उच्चता करा, कि हे भागवतम आपके गुण क्या है, जो असाधु है उसको साधुता प्रदान करते हो। जब कोई व्यक्ति श्रीमद भागवतम का प्रॉपरली शेल्टर ग्रहण करता है, चाहे वो असाधु क्यों ना हो, सारे दुर्गुणों से भरा क्यों ना हो, लेकिन जब भागवतम के संपर्क में आता है तो सारे सेंटली क्वालिटीज हैं, सारे साधु के जो लक्षण है गुण है वो उसके हृदय में भर जाते हैं। अति नीच उच्चता कर, और कोई व्यक्ति कितना ही नीच आदि क्यों ना हो, निम्न योनि में भी उसने जन्म क्यों ना लिया हो, नीच व्यक्ति क्यों ना हो सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो भागवतम के संपर्क में आता है तो सनातन गोस्वामी कहते हैं वो तुरंत उच्चता प्राप्त करता है। हा न मुंच कदाचिन माम प्रेमना ऋत कंठाय स्फुरो, हे श्रीमद भागवतम आप क्या करो, मुझे मुक्त करो, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय में और आप मेरे कंठ में स्फुरित हो जाओ ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं। तो इस प्रकार से श्रीमद भागवतम का गुणगान करते हुए सनातन गोस्वामी अपने हृदय को और अपने विचारों को प्रकट करते हैं और ये दिखलाते हैं कि किस प्रकार से एक वैष्णव को श्रीमद भागवतम के प्रति प्रेम चाहिए, किस प्रकार से श्रीमद भागवतम के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। ये सनातन गोस्वामी का, ये सनातन गोस्वामी के मनोवृत्ति या एटीट्यूड से हम समझ सकते हैं। तो श्रीमद भागवतम साक्षात कृष्ण है, जैसे हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है और दशम स्कंद क्या है, कृष्ण का मुख कमल है। और वास्तव में आज के श्लोक में भगवान के मुख कमल का वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो ऐसा जो मुख कमल है उस मुख कमल में भी रास लीला का वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। और वो जो जिसको कहा जाता है पांच प्रमुख अध्याय हैं, जिसको रास पंचाध्याय कहा जाता है, 29, 30, 31, 32 और 33। तो ऐसे जो पांच अध्याय हैं उनको कृष्ण का मृदु हास्य कहा जाता है। उनकी विशेष जो स्माइल है, स्वीट स्माइल प्रभुपाद कहते हैं, वो श्रीमद् भागवतम के वो अध्याय हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के आज के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी या ब्रह्मा, ओरिजिनली ये श्लोक ब्रह्मा बोल रहे हैं नारद के लिए, और उसी को शुकदेव गोस्वामी दोहरा रहे हैं राजा परीक्षित को, और इसी को सुत गोस्वामी दोहरा रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। तो इस श्लोक में कृष्ण की एक विशेष लीला का वर्णन ब्रह्मा जी या शुकदेव गोस्वामी करते हैं। और वो क्या लीला है कि कृष्ण रास क्रीड़ा करने के लिए ब्रज के वनों में, और विशेष रूप से ये लीला कहाँ घटित हुई थी, गोवर्धन में, कुसुम सरोवर के आगे एक स्थान आता है जिसका नाम है श्याम कुटीर। परिक्रमा मार्ग से आपको अंदर जाना होता है 1 किलोमीटर। तो वहां ये शंखचूड़ की ये जो लीला है ये घटित हुई थी, और वहां का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो सबसे मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी कोई है तो वो कृष्ण है, या फिर सबसे उनके जो एक्टिविटीज हैं, विशेष रूप से ब्रजवधु जो गोपिकाएं आदि हैं उनके साथ उनके जो कार्यकलाप हैं उनको बहुत ही अधिक गलत रूप से लोग क्या करते हैं, विवेचना करते हैं, समझते हैं, समीक्षा प्रदान करते हैं, चर्चा करते हैं। कृष्ण का नाम आते ही किसी को कुछ और याद नहीं आएगा, गोवर्धन धारण याद नहीं आएगा, क्या याद आएगा कि उन्होंने तो गोपियों के संग में बंशी वट में उस वट के नीचे गोपीनाथ रास क्रीड़ा करते, कौन कृष्ण करते, गोपीनाथ, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित, कि जो वंशी वट के नीचे यमुना के तट पर कृष्ण गोपिकाओं को अपने मधुर ध्वनि से आह्वान करते हैं और रास लीला प्रकट करते हैं। तो ऐसे रास लीला को सुनने के लिए, जानने के लिए, बात करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के लोग सदैव उत्तेजित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काम बहुत अधिक क्या है, उत्तेजना दे रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा ऐसे जो प्राकृत सहजिया है, सहजिया और प्राकृत सहजिया, प्राकृत सहजिया का मतलब भी है कि जो केवल कृष्ण के ऐसे रास क्रीड़ा आदियों को सुनना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि काम भोग या काम वासना उनके हृदय में कूट कूट के भरी है, और उसी को क्या वो करना चाहते हैं, कृष्ण का आश्रय लेकर, कृष्ण के लीलाओं का आश्रय लेकर उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे परम भगवान कृष्ण जिनको परम पुरुषोत्तम कहा जाता है, या श्रीमद् भागवतम उनको कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वो साक्षात भगवान है, परम भगवान है। क्यों? बाकी सारे अवतारों में या उनके जो अलग अलग कला और अंश आदि है उनसे भी अधिक जो चार गुण है वो भगवान में, कृष्ण में समाये हुए हैं। नित्यानंद दास जो जानवा माता के शिष्य है वो कहते हैं सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। वो कहते कि हे वल्लभ, ये श्लोक जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वो कहते सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर, कृष्ण कैसे हैं, मधुर है, मधुरता की खान है। जैसे उस दिन आपने सुना था वल्लभाचार्य का सॉन्ग सैटरडे इवनिंग में, आधरम मधुरम नयनम मधुरम, सब कुछ मधुर मधुर है। तो ऐसे कृष्ण परम मधुर है, और क्या क्या माधुर्य है उनमें, इसलिए कृष्ण को कहा जाता है माधुर्य का निलय कृष्ण। कृष्ण का जो विग्रह है, कृष्ण का जो स्वरूप है या रूप है वो मधुरता से भरा है, किसी और अवतारों में वो पाया नहीं जाता। तो ऐसे कृष्ण
सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर, चार चीजें भगवान में एक्स्ट्रा है। परम भगवान कृष्ण में जो मधुरता की पराकाष्ठा है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जब कृष्ण के 64 क्वालिटीज का वर्णन करते हैं तो उसमें जो 61 क्वालिटी है वो यही है लीला माधुर्य, कि भगवान के अंदर चार प्रकार के विशेष माधुर्य हैं, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य। कि बाकी जो भगवान के अवतार है, नारायण आदि है या बाकी जितने भी 6 प्रकार के अवतार है, वो इस चार चीजों को प्रकट नहीं कर सकते या प्रदर्शित नहीं कर सकते। सर्वोत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा किसी ने प्रदान की है, प्रकट की है, तो वह कृष्ण है। हाँ, रूप जिनका सौंदर्य इतना अधिक आकर्षक है कि स्वयं कृष्ण भी अपने सौंदर्य को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं। हाँ, रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण जब अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में निकले थे बछड़ों को चराते हुए, तब चलते चलते उन्होंने एक गाय या बछड़े का खुर के साइज का जो वाटर का प्लेस है, वाटर बॉडी है छोटा सा, उसमें कृष्ण ने ऐसे झांक के देखा तो अपना ही प्रतिबिंब देखा और कई समय वो वही देखते रहे कि कौन है ये इतना सुंदर बालक। हाँ, इस प्रकार से कृष्ण में रूप माधुर्य की खान है। हाँ, लीला माधुर्य। हाँ, वो लीला इसलिए है, प्रभुपाद ने क्या कृष्ण बुक का नाम लिखा है, लीला पुरुषोत्तम। हाँ, भगवान कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है। और उसी प्रकार से कृष्ण का एक विशेष गुण है, वह है वेणु माधुर्य। हाँ, बाकी कोई अवतारों को या भगवान के अलग अलग अंश विस्तार आदि को नहीं देखेंगे कि तो उनके हाथ में वेणु है और वो बजा रहे हैं, वो तो शस्त्र अस्त्र हाथ में धारण करके खड़े हैं। हाँ, तो ऐसे कृष्ण जब इस प्रकार की दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, विशेष रूप से रास लीला आदि, तो लोग क्या करते हैं, उसको गलत प्रकार से उनका अवलोकन करते हैं या समझते हैं। तो जब हम भगवत लीलाओं को, हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है हम लीलाओं को सुनना चाहते हैं, हाँ, लेकिन सिद्धांत को समझना नहीं चाहते। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा कि भगवत लीलाओं को जानने से पहले क्या करना चाहिए व्यक्ति को, भगवत सिद्धांत को समझना चाहिए, भगवान की महानता को समझना चाहिए। हाँ, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, जहां लागे कृष्णेर सदृढ़ मानस। कृष्णदास कविराज ने कहा जब चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करने से पहले वो कहते हैं आदि लीला सारा सिद्धांत से भरा हुआ है चैतन्य चरितामृत में। उस आदि लीला में सारे अध्यायों को, लगभग 6 अध्यायों में वो वर्णन करते हुए यही स्थापित करते हैं कि जिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आज समझने जा रहे हो, कोई सर्व सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात परम भगवान सच्चिदानंद कृष्ण है। और फिर उसको स्थापित करने के बाद महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन करते हैं। इसलिए उन्होंने उसमें कहा सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, आपके चित्त में आप आलसी मत बनो शास्त्र के सिद्धांतों को समझने के लिए। क्योंकि लीला कथा आदि सुनना बहुत अच्छा लगता है और सरलता से हम सुनते हैं, लेकिन हर एक जो भगवत लीला है उसमें क्या है, तत्व विचार है और लीला विचार है, सिद्धांत है और लीला से विशेष प्रकार की शिक्षा है जो भगवान अपने भक्त आदि को प्रदान करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज ने कहा सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, आप आलसी मत बनो। और सिद्धांत कहां भरा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता में। तो भगवद गीता जो सिद्धांत का सागर है उसको समझने के लिए व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद आपने इतने तो ग्रंथ लिखे, आप बताओ एक ऐसे आइलैंड में आपको रखा जाए अकेले को, कौन सा ग्रंथ आप अपने साथ ले जाओगे? प्रभुपाद ने कहा भगवद गीता मैं अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से हमें आलसी नहीं होना चाहिए सिद्धांत को समझने के लिए। हाँ, क्यों क्यों समझने से क्या लाभ है, जहां लागे कृष्णेर सदृढ़ मानस। क्योंकि जब सिद्धांत को समझते हो, कृष्ण के गौरव कृष्ण के महिमा को जानते हो, तो आपका जो मन है वो कृष्ण में दृढ़ता से लगता है। और तब वास्तव में आप क्या करते हो, भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो दृढ़ डिटर्मिनेशन भगवत सेवा में, भगवत कार्यों में, भगवत भजन में, अपने साधना आदि में तब हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है सिद्धांत आदि को सुनना, हाँ समझना, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। हाँ, इसलिए जो कृष्णदास कविराज है वो इस चीज का वर्णन करते हैं कि इसी कारण से कृष्ण लीला को समझने के लिए, और विशेष रूप से जो ये भगवत लीला सर्वत कृष्ण लीला है, रास लीला, उसको समझने की योग्यता बहुत रेयर है, या उसको नरेट जो उसको वर्णन करेगा उसके योग्यता का भी वर्णन चैतन्य चरितामृत में पूरे एक अध्याय में किया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो ऐसे आचार्यगण कहते हैं कि यदि व्यक्ति ऐसे भगवत प्रेम से युक्त महा वैष्णव के द्वारा श्रद्धा के साथ सुनता है, जिस भक्त के हृदय में डीप अटैचमेंट है कृष्ण के लिए, प्रगाढ़ आसक्ति है उनकी सेवा और नाम संकीर्तन के लिए, वो व्यक्ति वास्तव में भगवत लीलाओं को समझने का अधिकारी होता है। और कौन व्यक्ति उसको नरेट कर सकता है, कौन व्यक्ति है जिसके पास योग्यता है कृष्ण कथा का वर्णन करने की, कृष्ण लीला का? श्रीमद भागवतम के दशम स्कंद में शुरुआत में ही परीक्षित महाराज कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जो व्यक्ति वास्तव में ईर्ष्या आदि से मुक्त है वो वास्तव में अधिकारी है कृष्ण लीला का वर्णन करने का। या फिर निवृत्त तर्षे उपगीयमानात, या जिस व्यक्ति के हृदय में भौतिक तृष्णा नहीं है, तृष्णा मीन्स प्यास, किस चीज के लिए प्यास है हमारे हृदय में? काम, काम जो भोग है वो भी एक प्यास है, सबसे बड़ी प्यास है, जिसके कारण जीव इस भव सागर में अलग अलग शरीरों में भ्रमण कर रहा है और बारंबार उस प्यास को बुझाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ययाति महाराज ने कहा काम्यानाम शमति उपभोगेन न शम्यति। वो कहते कि ये जो काम रूपी प्यास है इसको जितना आप भोगते हो उतनी ये प्यास क्या होती है? बढ़ती है, कम नहीं होती। ये तो वैसे ही है कि जो फायर है उसमें क्या करते हो, आप घी डालते हो और उस घी के कारण वो बढ़ती है। इसलिए सबसे बड़ी तृष्णा है काम, और प्रभुपाद कहते कि जो वास्तव में कंप्लीटली फ्री हुआ है काम से वो वास्तव में कृष्ण के दिव्य लीलाओं को नरेट करने का, वर्णन करने का अधिकारी है, जो पूर्ण रूप से इससे मुक्त है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी को चूज किया गया है। शुकदेव गोस्वामी को क्यों चूज किया श्रीमद भागवतम का वर्णन करने के लिए? क्या व्यासदेव के पास कोई और क्वालिफाइड डिसाइपल्स नहीं थे? शुकदेव गोस्वामी के पास वो कैलिबर था, वो क्वालिटीज थी, वो क्वालिफिकेशन था, वो योग्यता था जिसके द्वारा वो श्रीमद भागवतम के इस दिव्यता का वर्णन कर सकते थे बिना किसी रुकावट के। जब व्यासदेव ने देखा, दो प्रकार से वर्णन आता है श्रीमद भागवतम के पहले स्कंद में भी वर्णन आता है कि किस प्रकार से श्रीमद ये जो शुकदेव गोस्वामी है पूर्ण रूपेण ये जो काम की प्यास है उससे मुक्त है। शुकदेव गोस्वामी ने जब जन्म लिया, जन्म लेते ही वो वैसे तो बाहर ही नहीं आ रहे थे, माँ के पेट से 16 साल के हो गए। उन्होंने कहा बाहर तो माया है और मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और पिता कह रहे आओ आओ बाहर, पिता की बात में बिल्कुल विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, व्यास ने सोचा कि एक ही व्यक्ति है जो माया से मुक्त है, मायाधीश है, और जिन्होंने भगवद गीता बोली है, हाँ कृष्ण कहाँ रहते हैं? वो द्वारका में, द्वारकावासी। तो फिर ऐसे व्यास ने द्वारकाधीश कृष्ण को निवेदन किया, कृष्ण आए वहां, और उनके वहां जब उनकी जो पत्नी है व्यास की गर्भवती थी और अंदर से कौन बोल रहे थे? शुकदेव गोस्वामी। उन्होंने कहा आप बाहर आ जाओ, आप चिंता मत करो, माया में आप नहीं गिरोगे, माया का प्रभाव में से प्रभावित नहीं होगे। तो जो भगवान उन्होंने देखा यही तो है, जिन्होंने कहा मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, वो व्यक्ति तर सकता है। हाँ, लेकिन बोट चाहिए। बोट क्या है? अभी तरना या तैरना हो सकता है उसका मतलब, तो तैरना है तो फिर जल है, भव सागर है, उसके लिए बोट की आवश्यकता, और बोट क्या है? भगवान के चरण कमल। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे शरणागत होता है, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी को भगवान ने कहा, और शुकदेव गोस्वामी तुरंत बाहर आए। कितना फेथ है, अभी भगवान ने इतना गीता बोला है, इतने श्लोकास बोले हैं, एक शब्द में भी हमारा विश्वास हो जाए हाँ फुल्ली फेथ, हाँ हम उसके लिए समर्पित हो जाए तो हम इस भौतिक जगत की सरलता से मुक्त हो सकते हैं। शुकदेव गोस्वामी भगवान के इस वाक्य पर उनका पूर्ण फेथ था और वो बाहर आए। आते ही उन्होंने ना अपने माँ का मुख देखा ना पिता का मुख देखा, दौड़ने लगे जैसे कि ओलंपिक रेस में भागते हैं। भागे 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 अभी बेटा जन्म लेता है तो पिता को कितना आनंद होता है। पहले पिता मुख देखना चाहता है, शास्त्र कहते बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले आके मुख किसने देखना चाहिए, पिता ने देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो जगन्नाथ मिश्र को बुलाया गया, आए दौड़ते उन्होंने मुख कमल को देखा और तुरंत नामकरण किया गौरांग। इनका नाम क्या है आज से, गौरांग। तो वैसे ही नंद महाराज भी बहुत एक जगह बिजी थे तो कोई उनकी कोई दासी दौड़ते हुए गई और उनको न्यूज दिया और वो दौड़ते हुए आए और तुरंत कृष्ण का मुख उन्होंने देखा। तो वैसे ही व्यासदेव भी चाह रहे थे बेटे का मुख देखना, लेकिन बेटा तो भाग रहा था मुख पीछे मुख दूसरी ओर करके। फिर व्यासदेव भी भाग रहे हैं, भाग भाग के जब गए शुकदेव गोस्वामी दौड़ रहे थे तो एक जलाशय के किनारे गए। भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि वो जलाशय में कुछ युवतियां और स्त्रियां नग्न नहा रही थी और शुकदेव गोस्वामी अभी जल लिया तो कोई वस्त्र वैसे ही उन्होंने नहीं पहने, टाइम ही नहीं है, वो भी नग्न थे। लेकिन जब वो गए वो भाग रहे थे उस जलाशय के किनारे से चल रहे थे तो उन स्त्रियों ने उनको देखा, लेकिन फिर भी स्त्रियों को ये विचार नहीं आया कि हमें अपने अंग जो खुले हैं उनको ढकना चाहिए। और शुकदेव गोस्वामी भी उससे परे थे, प्रभुपाद ने कहा यही है हाँ विद्या विनय संपन्न आत्मवित व्यक्ति, जो आत्म तत्व को देखता है जानता है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी ये जो भेद है स्त्री और पुरुष आदि का, ये जो शारीरिक भेद है इससे परे थे, इससे दिव्य थे, वो मुक्त पुरुष थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण लीला या भगवत रास लीला आदि का वर्णन करने के लिए वही व्यक्ति क्वालिफाइड है या सुनने के लिए वही क्वालिफाइड है जो व्यक्ति लिबरेटेड है। तो किसी भक्त ने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद आजकल हमारे टेम्पल में लॉस एंजलिस में ऐसा एक ग्रुप इकट्ठा हो गया था, वो हमेशा कृष्ण लीला का वर्णन करते थे, रास लीला वगैरह वगैरह, चैतन्य चरितमृत के कुछ पार्ट्स आदि। तो फिर उन्होंने कहा, प्रभुपाद के डिसाइपल ने कहा कि वो कहते कि इनका वर्णन करने के लिए या सुनने के लिए लिबरेटेड व्यक्ति मुक्त होना या मुक्त होना वो योग्यता है। तो प्रभुपाद ने कहा उनका क्या विचार है उन शिष्यों का, तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को लिबरेटेड कहते हैं कि हम भी लिबरेटेड है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम हरि नाम लेते हैं तो हम ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, डिवोटीज आर ऑलरेडी लिबरेटेड। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं वो लिबरेटेड है हेल जाने के लिए। प्रभुपाद ने कहा वो मुक्त किस लिए, नरक जाने के लिए, वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारा इससे रिलेटेड बहुत प्रभुपाद का वर्णन आता है, अलग अलग उनके जो भक्तों ने उनका गुणगान किया है अलग अलग ग्रंथों में। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शना, वो वास्तव में पंडित है जो हाथी कुत्ता चंडाल आदि सबको एक दृष्टि से देखता है। स्त्री पुरुष क्या देखता है, ना देखे तार मूर्ति, उनके मूर्ति को नहीं देखता है, उनके फॉर्म आदि को नहीं देखता है, वो क्या देखता है, आत्म तत्व को, आत्मा को देखता है भगवान के अंश के रूप में। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी ने जैसे उनको देखा तो स्त्रिया आदियों को, स्त्रियों ने भी देखा तो कोई भौतिक आकर्षण या भौतिक जो लज्जा आदि है वो नहीं महसूस हुई। स्त्रियों ने देखा कि ये इनोसेंट बालक है, इनोसेंट को क्या कहेंगे, मासूम निर्दोष मासूम बालक है। जैसे हम छोटे से बच्चे को देखते तो स्वाभाविक सोचते कितना मासूम है ना, इनोसेंट है। तो उसी प्रकार से उन युवतियों ने या स्त्रियों ने भी देखा और वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई और ना शुकदेव गोस्वामी उनको देखने मात्र से विचलित हुए। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी पूर्ण रूपे न ये काम गंध से मुक्त थे। तो व्यासदेव जब बाद में वो आए तो व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने सोचा कि अभी इसको भागवतम का वो करना है तो इसको टेस्ट लेता हूं। व्यासदेव ने क्या कहा कि इसको मैं शिक्षा देना चाहता हूं जनक महाराज के द्वारा कि इंद्रियों का कंट्रोल कैसे किया जाता है, इंद्रियों का वश कैसे किया जाता है। अभी वो राजा है जनक, इतने उनकी रानियां आदि है, उनके पास शुकदेव गोस्वामी सहसा मुक्त पुरुष को भेजा जा रहा है व्यास देव के द्वारा, किस लिए? इंद्रिय निग्रह कैसे करना है उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी को कहा कि शुकदेव आप जाओ जनक महाराज के पास और उनसे क्या करो, सीखो इंद्रियों का वश कैसे किया जाता है, इंद्रिय निग्रह कैसे किया जाता है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी चलते चलते जाते मिथिला और वहां जाकर उनके महल महल के बाहर रुकते हैं और वो मैसेज देते कि अभी मैं आ गया हूं आपसे कुछ सीखने के लिए। तो जो राजा जनक है वो बाहर ही नहीं आए, कितने दिन, 3 दिन, उनके मैसेज से कोई उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, कोई आदान प्रदान नहीं किया। वो 3 दिन शुकदेव गोस्वामी बाहर ही बैठे रहे और बैठकर क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शुकदेव गोस्वामी उससे परे हैं, चाहे उनका कैसे स्वागत हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ सुख दुख समम। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी 3 दिन बैठे रहे, तीसरे दिन के बाद आए जनक महाराज और उनका बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया, नगाड़े बजाए, उनको वस्त्र अर्पित किए, माल्यार्पण किया, सब कुछ किया और अंदर ले गए। ले जाकर उनसे समझा कि क्या 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 कार्य, किस चीज के लिए आप आए हो। तो शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। तो फिर राजा जनक उनकी परीक्षा लेने लगे। जनक महाराज ने शुगर का एक टुकड़ा लिया, शुकदेव गोस्वामी को कहा कि जिह्वा बाहर करो और उस जिह्वा के ऊपर उन्होंने क्या किया, शुगर का एक टुकड़ा रखा और देखा कि अभी हम सोचने मात्र से हमें जिह्वा से क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, इमली का नाम लेने मात्र से, या फिर जिह्वा शुगर शुगर हमारी जिह्वा पर है। तो शुकदेव गोस्वामी के जिह्वा पर वो शुगर का टुकड़ा रखा, फिर भी एक थोड़ा सा कण भी सलाइवा जो क्या कहते थूक, या जो थूक नहीं कहेंगे क्या कहेंगे लार, हाँ वो नहीं निकले। तो जनक महाराज बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने उनको दूसरा कार्य दिया, एक ग्लास लिया शुकदेव गोस्वामी के हाथ में दिया और पूरा ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक भरा होता है ऐसे उन्होंने भरा और कहा कि आप महल की परिक्रमा करो। और उस महल में क्या थी, हजारों हजारों नव युवतियां थी, सुंदरियां थी जो गा रही थी, नाच रही थी, अलग प्रकार के हाव भाव प्रकट कर रही थी, डिफरेंट प्रकार के जो वीनाज है, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको बजा रहे थे। और शुकदेव गोस्वामी को उनके बीच में चलना था और क्या हाथ में लेकर, ग्लास जो भरा हुआ है। शुकदेव गोस्वामी गए और वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बूंद भी गिरा नहीं, गिरा ही नहीं बल्कि हिला भी नहीं, जैसे पानी हिलता है हमसे, गिरेगा नहीं लेकिन हिलेगा भी, लेकिन हिला भी नहीं। तो जनक महाराज ने कहा कि वास्तव में तुम क्वालिफाइड हो। उन्होंने एक मैसेज लिखा व्यास देव के लिए कि ये वास्तव में पूर्ण रूपेण इंद्रिय निग्रह काम गंध से मुक्त पुरुष है, और ऐसे उनको मैसेज देकर व्यास देव के पास भेजा। तो ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है। अभी तो हमने धंधा बनाया है श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने के लिए, भागवतम कथा करने से पहले ही डील होती है कितना लाख आप दोगे आपस में, क्योंकि हमें कुटुंब भरने नवा कलयुग में क्या करना है, हमें पेट और कुटुंब भरना है श्रीमद् भागवतम का बिजनेस करके। तो पद्म पुराण में कहा है कि जैसे ही कथा के बीच में और श्रोताओं के बीच में, वक्ता और श्रोताओं के बीच में मनी का डीलिंग होता है तो वो कथा सत्व गुण में नहीं आती, तुरंत ही तमोगुण आदि में वो चली जाती है, वो कथा लाभ नहीं पहुंचाती, ना वक्ता को लाभ पहुंचाती है ना श्रोता को लाभ पहुंचाती है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी इतने क्वालिफाइड थे जिनके द्वारा श्रीमद् भागवतम या कृष्ण की जो दिव्य रास क्रीड़ा आदि है उनका उन्होंने वर्णन किया। तो श्रील प्रभुपाद जब मद्रास में थे, मिस्टर बालू, ये बालू या बाली समथिंग क्या नाम था उनका, एक फैमिली जिनके घर में रुके थे प्रभुपाद फर्स्ट फ्लोर में। तो शाम का समय हुआ तो वो पति पत्नी थोड़े डिवोटेड थे, बड़ा थोड़ा अफेक्शन था, नेचुरल भारत में जो गुजराती फैमिलीज होती है या कुछ रिच फैमिली होती है, लेकिन उनको एक फेथ होता है, श्रद्धा होता है साधुओं से सुनना, विशेष रूप से भागवतम आदि को सुनना। तो वो पति पत्नी शाम के समय में आए श्रील प्रभुपाद के पास और श्रील प्रभुपाद को कहा, बड़े ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि हम तो राधा कृष्ण की लीला आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये तो अध्यात्म के बहुत एग्जॉल्टेड टॉपिक्स है, हाँ ये जो रास क्रीड़ा आदि है, रास लीला उन्होंने कहा हम सुनना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा ये तो केवल लिबरेटेड मुक्त व्यक्तियों के लिए ये श्रवण या इसका वर्णन करना संभव है। और उन्होंने कहा जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वही व्यक्ति वास्तव में ये जो रास लीला या कृष्ण लीला आदि है उनको सुन सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, हमारे हृदय में ना कुछ भी नहीं है और हम बहुत आपसे सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, फिर से रिपीट किया, प्रभुपाद कहते हैं व्हेन वन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट टू वाइफ फैमिली होम एंड मनी कुल ही बिकम फिट टू हियर कृष्णाज रास डांस। इस प्रकार से कोई व्यक्ति पूर्ण रूपे नहीं भौतिक आसक्तियों से मुक्त है तो वो व्यक्ति फिट है कृष्ण कथा या इस कृष्ण कथा हम इस विशेष रूप से रास क्रीड़ा को सुनने के लिए। तो लेकिन फिर भी वो सुन नहीं रहे थे, फिर से हाथ जोड़ रहे थे, बार बार प्रणाम कर रहे थे और उनकी पत्नी और वो प्लीज कृपया कृपया आप रिसाइट कीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा आप सुनने के लिए क्वालिफाइड हो सकते हो लेकिन मैं वर्णन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। तो इस प्रकार से ये उनकी विनम्रता है। हाँ तो इस प्रकार से ये जो विषय है रास क्रीड़ा आदि जिनको हम क्या करते तुरंत भौतिक जो सहजिया व्यक्ति है, हाँ सहजिया व्यक्ति भगवत तत्व को जानना नहीं चाहता और विधि विधान आदि को पालन नहीं करना चाहता, वो सीधा जंप लाना चाहता है। तो प्रभुपाद हमेशा सावधान रखते थे कि नकल ना करें हम लोग ना, क्योंकि हमें बहुत बुरी आदत है, तुरंत नकल करने की आदत है। तो प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में थे तो उस समय में एक डिवोटी जो वहाँ के जो गोस्वामी हैं विश्वंबर गोस्वामी, हाँ जो वहाँ के जो हेड है वहाँ राधा दामोदर मंदिर के, उन्होंने कहा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद क्या आप सर्कस लेके आए हो क्या वृंदावन? तो प्रभुपाद ने कहा क्या कह रहे हो सर्कस, कौन सी सर्कस? तो उन्होंने कहा कि आप तो अमेरिका से आए हो और इतनी दूर दूर से आपने सर्कस भी लाए और सर्कस में आपने क्या लाए हो, बंदर लाए हो और बड़े बड़े लायन शेर आदि को लेके आए हो और वो सब नाच रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा शेर वगैरह नाच रहे हैं गोस्वामी, आपको क्या हो गया, आप तो एडवोकेट हो, हाँ बड़े स्कॉलर हो या ऐसी क्या बातें कर रहे हो, हाँ थोड़ा सही सही बताओ। तो उस विश्वंबर गोस्वामी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि आपके जो पांच छह शिष्य है ना, वो क्या कर रहे हैं, रिक्शा में बैठकर जाते और जैसे ही रिक्शा में बैठते बैठते देखते कि कोई स्वीट शॉप आ गया, लस्सी का शॉप आ गया, उतरते और जंप लगा के सीधा चुराते हैं, क्या करते हैं, लस्सी का ग्लास चुरा लेंगे, मलाई चुरा लेंगे, पेड़ा चुरा लेंगे, हाँ ये सब करते हैं। तो उन्होंने दही चुराते हैं, बटर चुराते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, ये क्या हो गया मेरे शिष्यों को? तो पांच शिष्यों को बुलाया, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, जब उनको बुलाया तो प्रभुपाद ने कहा आप क्या ऐसा कार्य क्यों करते हो ये सब? उन्होंने कहा हम इसलिए करते हैं वृंदावन में क्योंकि कृष्ण करते थे कृष्ण भी तो चुराते थे मक्खन दही स्वीट्स आदि, इसलिए हम करते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको डांटा और प्रभुपाद ने कहा तो आप लोग नकल करने का प्रयास कर रहे हो, हाँ कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो आप क्यों नहीं सोचते कि गोवर्धन मुझे उठाना है? हाँ तो प्रभुपाद ने कहा जो वैष्णव है हाँ उसका बिहेवियर, हाँ उसका आचरण इस सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। आप वृंदावन में हो तो आपको वृंदावन में इस श्लोक के अनुसार निवास करना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक का उच्चारण किया और उनको डांट लगाई अपने शिष्यों को। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे लोग रास क्रीड़ा की नकल करना चाहते हैं, उसी प्रकार से शिव जी की भी नकल करते हैं, गांजा पीना चाहते हैं, लेकिन ये जब विष का प्याला दिया जाए सामने कि शिव जी ने भी विष का प्याला पिया था आप भी पी लो, तो वो नहीं पीना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हम सब इस बीमारी से भरे हुए हैं, क्यों चाहते हैं हम ये सब करना, क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की क्या है, बहुत तीव्र इच्छा है, तीव्र इच्छा भरी पड़ी है भोग करने की, तीव्र लालसा है। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि कई लोग होते हैं जो मांस खाने के इच्छुक होते हैं, तो शास्त्रों से पुराणों से ऐसे श्लोकास कोटेशन स्टोरीज निकालते हैं और पशुवध यज्ञ आदि है उसका वर्णन करते हुए स्थापित करेंगे कि नहीं मांस खाना चाहिए। तो उसी प्रकार से ऐसे डिवोटीज है, सो कॉल्ड डिवोटीज, जो गोस्वामी लिटरेचर्स का मिस यूज करेंगे, उसमें से कोट्स श्लोकास ये सब रेफरेंस निकालेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि राधा कुंड में जाकर निवास करना चाहिए और वहां भजन करना चाहिए। हाँ, सखीर अनुगत कर। अब ये सखीर अनुगत नहीं होंगे, जीवन में एक सखी याद करेंगे अपने लाइफ में और उसके अनुगत होंगे। प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि ऐसे लोग हैं जो इसका मिसयूज करते हैं इन स्क्रिप्चर्स का, और वो ये भूल जाते हैं उपदेश अमृत के पहले श्लोक को, वाचो वेगम मन, क्या है वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, इसको भूल जाते हैं और वो जाकर इस प्रकार से सहजिया का अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे सो कॉल्ड बाबा जीज या सन्यासीज आदि है, डिवोटीज हैं, जो क्या करते हैं रास क्रीड़ा का, रास लीला या कृष्ण लीला का दुरुपयोग करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे कई बाबा जीज हैं जो रहते हैं ब्रज में जाकर, लेकिन अपने अपनी सेवा में क्या किया उन्होंने, 3 दर्जन सेवा दासियां रखी हैं। जैसे मुझे याद है मैं वहां गया था गंगा सागर 2009 में, तो वहां हम हरि नाम करते थे कम से कम 5 आवर्स एवरी डे डिवोटीज, तो 15 दिन वहां रुके थे वहां, बिल्कुल मकर संक्रांति के समय और कुंभ मेला जैसा मेला होता है, बहुत रश होता है, हजारों लोग नागा बाबाज और सारे डिफरेंट साधुज उनके टेंट्स वगैरह होते हैं, और वहां कपिल देव, लॉर्ड कपिला जो देवहूति पुत्र है उनका मंदिर है मेन मंदिर, तो उसका दर्शन करने के लिए सब आते हैं वहां और गंगा स्नान करते हैं। तो कपिल भगवान का जो टेम्पल है उसके सामने साथ में छोटी छोटी कुटिया होती हैं, छोटे छोटे से हट होते हैं, वहां उसमें सारे नागा बाबाज रहते हैं और उनके हाथ में जैसे छामर और दूसरा पंख होता है, छोटा सा मोर पंख का गुच्छा होता है, और वो सब आते हैं उनका ब्लेसिंग लेने के लिए, प्रभोज माता जी सब लोग आते हैं, सारे जनता जनार्दन आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और वो बड़े आनंद से आशीर्वाद देते रहते हैं, आशीर्वाद गुरु। तो हम जब हरि नाम करते हुए जाते थे तो सब हरे कृष्ण हरे, इस्कॉन वालों को देख के हरे कृष्ण कहते थे, और ऐसे जो नागा बाबाज है उनके कुटिया में 2 पार्टीशन होते थे और हमने क्लियरली देखा सब में, वो खुद तो आगे बैठे रहते, हजारों जनता आके उनका चरण स्पर्श कर रही है, आशीर्वाद ले रहे हैं, और वो वैसे ही आग जला के जो राख वगैरह होता है वो सबको लगाते हैं, सबको टीका लगाते हैं, लोगों को तो वही चाहिए भौतिक संपन्नता है। तो फिर लेकिन वो बैठे रहते पूरे दिन वहां, लेकिन साथ में वो जो पार्टीशन है उसमें एक छोटा सा दौर होता है और वहां एक माता जी जो उनकी दासियां हैं वो बैठी होती हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो इनको कहा जाता है दारी सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो इस प्रकार से क्या करते हैं लोग, कृष्ण लीला का सहारा लेकर आश्रय लेकर अपने इंद्रिय तृप्ति को पूर्ति करना चाहेंगे। हाँ, इसी प्रकार से हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के समय एक व्यक्ति था बिश किशन, खुर्दा जो जगन्नाथपुरी से एक पहले रेलवे स्टेशन है वहाँ, वहाँ एक जंगल में वो रहता था, वो अपने आप को विष्णु महाविष्णु का अवतार मानता था, फिर अपने 2 डिसाइपल को उन्होंने एक शिवजी बना दिया था और एक को ब्रह्मा तो उनका विचार था कि हम आगे चल के त्रिदेव टेम्पल स्थापित करेंगे वहां खुर्दा में, त्रिदेव मंदिर, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ये स्वयं विष्णु है। तो इस प्रकार से जब ये व्यक्ति और वो क्या करता था, शाम के समय सारे सब स्त्रियों को रास लीला के लिए इनवाइट करता था, और बेचारी और सारे जो घर के लोग हैं गांव के लोग पूरे दिन खेती में काम करने जाते थे, राजा के वहां नौकरी करने जाते थे, घर में आते देखते अरे पत्नी नहीं है घर में, पता चलता था कहाँ चले गई, बिश किशन के वहां रास क्रीड़ा के लिए। तो ये सब परेशान थे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी को ये कंप्लेंट किया, फिर ब्रिटिश कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने किसको सौंपा, भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर भागवत रूपी शस्त्र को साथ ले गए और जो बेश किशन है उसका क्या किया, पर्दाफाश किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि उस समय प्रभुपाद के उनके समय जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था तो उस समय भी कराची में एक व्यक्ति था, वो अपने आप कृष्ण का अवतार मानता था और ओपनली इन्वाइट करता था कि शाम के समय में क्या हो जाए, सारी स्त्रियां वगैरह आए रास लीला में भाग लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे जो फेक गुरुज है, ऐसे फेक जो लोग हैं, वो इस कृष्ण लीला का आश्रय लेकर उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि सिस्टमैटिकली श्रीमद् भागवतम को शुरुआत से अंत तक हमें पढ़ना चाहिए, तो हम प्रिपेयर हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं कृष्ण के दिव्य लीलाओं को रिसीव करने के लिए। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता आदि को हम समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है, हम चाहते नया कुछ चाहिए, मसाला चाहिए या समथिंग, नो डिवोटीज में भी देखा जाता है, तो वो चाहते कि नहीं नहीं अभी कब तक ये आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये सारा जगत चार दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि ये लोग इस प्रकार की चर्चा में, जब ये गोपी भाव क्लब जब शुरू हुआ था जिसमें 50 डिवोटीज थे और वो बिल्कुल अलग से रहते थे, उन्होंने अपना न्यूज़लेटर भी शुरू कर दिया था और इसी पर ही चर्चा होती थी, तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा ये पहले एडवोकेट बनने से पहले ये जज बनना चाहते हैं, मतलब एडवोकेट का क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन क्या बनना चाह रहे हैं, जज। हाँ, उसी प्रकार से इन इन लोगों की ये स्थिति है। वो कहते हैं कि ये राधा कुंड में निवास करना चाहते हैं और गोपियों का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन वो रघुनाथ दास गोस्वामी को फॉलो नहीं करना चाहते। रघुनाथ दास गोस्वामी को फॉलो करना मीन्स क्या करना, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक हरि नाम लेना, वो नहीं हो रहा है। और वो कहते रघुनाथ दास गोस्वामी रोज श्री विग्रह को इतने प्रणाम करते थे, वैष्णवों को इतने प्रणाम करते थे, इस प्रकार से सेवा करते थे, वैराग्य का जीवन था। हाँ, तो ये नहीं करना चाहते, लेकिन वो सीधा जंप मारना चाहते हैं केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति की, जो भौतिक भोग की तृप्ति करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति इन इन लीलाओं को सही रूप से समझना नहीं चाहता और बिना किसी योग्यता के उसको सुनना चाहता है, बिना किसी योग्यता के क्या करना चाहता है, उनका वर्णन करना चाहता है केवल झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत सावधान थे। उन्होंने एक बार एक भक्तों को कहा कि वैष्णव गीत गाओ, वो गाने लगा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। उन्होंने कहा रास्कल, इससे अलावा नहीं गाना नहीं आ रहा है तुम्हें, ये क्यों नहीं आ रहा है कि हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मेरा जीवन गया राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खाइनो। एक बार एक गा रहा था यशोमती नंदन, भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको भी बहुत डांटा। उन्होंने कहा तुम्हें यही गीत अच्छे लगते है, श्रित कमला कुछ मंडल है, वो स्ट्रिक्ट थे, ये गीत गाने नहीं देते थे वो, श्रित कमला जो मंगला गीतम है जयदेव गोस्वामी का। हाँ, तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज वो जानते थे कि क्या होंगे, इससे ये जो भक्त हैं वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन का विनाश करेंगे, अपने पाँव पर क्या है कुल्हाड़ी मारने के समान है। जैसे छोटा सा नया नया बच्चा जन्म लिया है उसके लिए उचित क्या है, माँ के स्तनों से जो दूध आ रहा है वो उसका पान करना, माँ क्या सारी चीज़ें ग्रहण कर रही हैं और दूध फॉर्म में दे रही है, वो उसके लिए उचित है। तो उसी प्रकार से हमारे लिए है कि ये जो ग्रंथ हैं जिनको हम सिस्टमैटिकली सिक्वेंसली अध्ययन करते हैं और समझते हैं धीरे धीरे भक्तों के संग में, तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में स्थिर हो पाते हैं और उन्नति कर पाते हैं। तो इस श्लोक में जनरली शंखचूड़ की लीला का वर्णन किया है और शंखचूड़ वो कौन है, शंखचूड़ इसका अनुचर है, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, क्योंकि शंखचूड़ जब कृष्ण गोवर्धन के तलाटी में थे कुसुम सरोवर के थोड़ा सा आगे जाकर, आज भी ये लीला स्थली है जहाँ, क्योंकि शंखचूड़ को कंस ने भेजा था और क्यों भेजा था, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जब कृष्ण को मथुरा से वृंदावन भेजा गया और फिर उनकी जगह जो क्या थे, दुर्गा देवी जो बालिका थी उनके जगह जो बालिका थी आठवीं पुत्री के रूप में कंस आया और उन्होंने मारना चाहा तो वो बालिका देवी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे कंस तुम तो पिछले जीवन में कालनेमी असुर थे और भगवान के कारण ही तुम्हारी मृत्यु हुई थी, उनके शंख चक्र आदि के द्वारा तुम्हें मार डाला था, तो तुम अभी भी वही परम भगवान आज ही प्रकट हुए है और वो तुम्हारे मृत्यु के कारण है। लेकिन एक बात देवी ने कही थी कि कल आठ महाशक्ति प्रकट होने वाली है और उनमें से दो बहुत महत्वपूर्ण है। आठ शक्तियां कौन थी? श्रीमती राधिका, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैब्या, श्यामला और बद्रा। उस देवी ने कहा कंस को कि आठ प्रकट होने वाले और इनमें से दो बहुत प्रमुख है, श्रीमती राधिका और चंद्रावली। कोई व्यक्ति इन दोनों से विवाह करता है तो वो राजेंद्र हो जाता है, वो सर्व शक्तिशाली व्यक्ति त्रिभुवन का, इवन शिवजी को हराने की योग्यता उसके पास आती है। तो इस चीज को सोचकर कंस ने कहा मेरे पास इतना बल आएगा तो ये इसको तो मैं हरा दूंगा, ये जो आठवां जिसने भी जन्म लिया है मुझे मारने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पूतना को भेजा, पूतना को कहा कि जिन जिन बालिकाओं ने जन्म लिया है रिसेंटली उन सबको किडनैप करके लाओ, ताकि मैं फ्यूचर में विवाह करूंगा। तो फिर बाद में पूतना का भी वध होता है, फिर कंस केशी असुर को भेजता है और केशी असुर कहता है कि ये काम करने के लिए क्या है, बेस्ट है, शंखचूड बहुत अच्छा है। और ये शंखचूड क्या है, शंखचूड जिसने इसका कुबेर का जो ट्रेजरी है उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सिक्योरिटी गार्ड का लीडर है और वो वहां उसने देखा कि खजाने में एक शंखचूड जो मनी है वो मनी बहुत सुंदर मनी था। उसने क्या किया, शंखचूड, ये मनी का नाम और फिर आसुर का नाम भी हुआ, तो उस मनी को उसने लिया और अपने सर में धारण कर लिया था उनके खजाने से, और जिसके कारण ये आसुर कुबेर के वहां से आया था और कंस का उसने आश्रय लिया था। और कंस ने उसको कहा था कि तुम क्या करो, राधा का हरण करो, श्रीमती राधिका का अपहरण करो, उनको लाओ। तो ये ढूंढते हुए आया ब्रज में और देखा कि कृष्ण अपने रास क्रीड़ा आदि के लिए गोवर्धन के तलहटी में है, तो वह बलराम भी थे, कृष्ण भी थे, और ये आया और देखा कि कृष्ण बलराम थोड़े बिजी हैं, तो उन्होंने उस असुर ने इन एक बड़ा सा स्टिक अपने हाथ में लिया। कृष्ण बुक के 34वें अध्याय में शंखचूड का वर्णन श्रील प्रभुपाद करते हैं, कुछ एक दो पैराग्राफ में। तो फिर इस असुर ने बड़ा स्टिक लिया और सारे गोपियों को दूर लेते जा, उन्होंने कहा, सोचा कि क्योंकि उसके पास ऐश्वर्य था, धन है, तो उसके बाद क्या आता है व्यक्ति के अंदर, भोग करने की भावना। धन आता है तो तुरंत भोग चाहिए, उसके बिना रह नहीं सकता। तो इसके पास धन था तो भोग के लिए उसने सोचा, ये सुंदर युवती है, ये दो युवकों के साथ ही क्यों, मैं उनका भोग करना चाहता हूँ। तो उनको साइड में ले जा रहा था, श्रीमती राधिका का अपहरण करना था। और फिर वो गोपियां श्रीमती राधिका गोपी के सारी आक्रोश करती है, तो कृष्ण तुरंत आते हैं, आकर क्या करते हैं, मुट्ठी से उसको मारते हैं, जैसे इस श्लोक में कहा है कि उसके सर से धड़ अलग कर दिया, इसके ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने शंखचूड़ का भगवान ने वध किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हर आसुर एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो ये शंखचूड़ किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है कि व्यक्ति एक्वायरिंग नेम एंड फेम, नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो भावना है सूक्ष्म रूप से, ये भावना का मतलब ये है कि शंखचूड़ हमारे हृदय में आश्रय ले रहा है या शंखचूड़ के चरणों का हमने आश्रय लिया है। और दूसरा क्या है, डिजायर फॉर सेंसियस एंजॉयमेंट अंडर द प्ली ऑफ डिवोशन, भक्ति के नाम पर इंद्रिय भोग करना, ये शंखचूड़ इस दुर्गुण या इस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में कृष्ण लीला का वर्णन करने का सामर्थ्य, रास लीला आदि का वर्णन करने का सामर्थ्य किन में है, महान जो आचार्य गण है। तो इसलिए रेगुलर श्रवण करते रहना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवतम को हम जब रेगुलर सुनते हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर वो विजन नहीं है, हमारे आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए हमें कृष्ण के कार्यकलाप भौतिक लगते हैं। कृष्ण के कार्यकलाप एक युवती और युवक के बीच के जो भौतिक संबंध है उस दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। तो इसलिए जब हम सुनते जाते हैं तो ये जो विजन है मोतियाबिंद है, ये क्या होता है, खत्म होता है और परफेक्ट विजन हम लाते हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कृष्ण के वास्तविक काम गंध से रहित कार्यकलापों को, उनके दिव्य लीलाओं को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, शुकशील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में इसकी पुष्टि करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।